ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सभामुख पद पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल का निर्विरोध निर्वाचित होना तय। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने विकास योजनाओं, बजट क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों पर गंडकी प्रदेश के सांसदों के साथ की चर्चा। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल के 76वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। लोकतंत्र की स्थापना और उसे संस्थागत करने में रेडियो नेपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ विक्रम तिमलसेना का कथन। और लगभग 5 दशक बाद मानवयुक्त अंतरिक्ष यान चंद्रमा की ओर हुआ रवाना। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा के सभामुख पद के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल की एकमात्र उम्मीदवारी दर्ज हुई है। निर्धारित समय सीमा के भीतर केवल अर्याल का ही प्रस्ताव दर्ज होने के कारण उनका निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग सुनिश्चित हो गया है। संघीय संसद सचिवालय के अनुसार आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उम्मीदवारी दर्ज करने का समय निर्धारित किया गया था। इस अवधि में केवल अर्याल की ही उम्मीदवारी दर्ज होने के बाद वे संसद का नेतृत्व संभालने की तैयारी में हैं। संसद के प्रवक्ता एकराम गिरी के अनुसार चैत 22 को होने वाली प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। बैठक में प्रस्तावक और समर्थक अपने विचार रखने के बाद अर्याल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा। बता दें कि सभामुख पद रिक्त होने के कारण प्रतिनिधि सभा के ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। नए सभामुख के चयन के साथ ही अब संसद को पूर्णकालिक नेतृत्व प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज गंडकी प्रदेश के सांसदों के साथ विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आयोजित इस बैठक में गंडकी प्रदेश के विकास परियोजनाओं, बजट क्रियान्वयन की स्थिति तथा संघ प्रदेश और स्थानीय तह के बीच समन्वय के विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री शाह कोशी, कर्णाली और मध्य प्रदेश के संघीय सांसदों के साथ भी इसी प्रकार की बैठक कर चुके हैं। सरकार सभी प्रदेशों के जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद स्थापित कर समग्र विकास को गति देने की रणनीति के अनुरूप इस प्रकार की बैठकों को निरंतरता दे रही है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था रेडियो नेपाल का 76वां वार्षिकोत्सव आज विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया। सिंह दरबार स्थित रेडियो नेपाल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ विक्रम तिमलसिन्हा ने कहा कि देश में लोकतंत्र की स्थापना और उसे संस्थागत रूप देने में रेडियो नेपाल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने रेडियो नेपाल से अपेक्षा की कि वह जन अपेक्षाओं के अनुरूप जिम्मेदार बनते हुए सत्य और तथ्यपरक समाचारों का प्रसारण करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश को एकताबद्ध और सशक्त बनाने के लिए केवल दूसरों से जवाबदेही की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वयं भी जवाबदेही निभानी होगी। मंत्री तिमलसिन्हा ने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर काम कर रही है और अब किसी को भी गलती करने की छूट नहीं है। कार्यक्रम में मंत्रालय की सचिव लक्ष्मी कुमारी बसनेत ने बदलते समय के अनुरूप रेडियो नेपाल को अधिक तकनीकी मैत्री बनाना आवश्यक बताया। उन्होंने विश्वसनीय समाचारों के माध्यम से श्रोताओं का विश्वास बनाए रखने पर भी जोर दिया। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने कहा कि विभिन्न उतार चढ़ावों से गुजरते हुए रेडियो नेपाल अब सार्वजनिक सेवा प्रसारण के रूप में विकसित हुआ है और वर्तमान संक्रमणकालीन चुनौतियों को कम करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सार्वजनिक सेवा प्रसारण को दीर्घकालीन रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस आधार तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। वार्षिकोत्सव के अवसर पर रेडियो नेपाल में 25 वर्षों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को दीर्घ सेवा पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए। इस वर्ष के रेडियो नेपाल श्रेष्ठ सम्मान 2082 से नेपाली गीतकार, लेखक एवं फिल्म निर्देशक यादव खरेल और वरिष्ठ गायिका नूपुर भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया। रेडियो नेपाल का 76वां वार्षिकोत्सव इसके प्रादेशिक प्रसारण कार्यालयों में भी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। संवैधानिक विवादों के समय पर ही निपटारे, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्वोच्च अदालत में संवैधानिक इजलास से संबंधित वेब पोर्टल शुरू किया गया है। आज आयोजित एक कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ने पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये पहल संवैधानिक इजलास को सुदृढ़ बनाने, संविधान की रक्षा करने और न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक इजलास संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का महत्वपूर्ण अंग और संविधान का अंतिम व्याख्याता है, लेकिन वर्तमान में यह कार्यभार और प्रक्रियागत देरी के दबाव में है। इसे अधिक सक्रिय और विश्वसनीय बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सर्वोच्च अदालत के अनुसार संवैधानिक इजलास में इस समय 282 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से कई 8 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जबकि 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित 73 मामले हैं। कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश मल्ल ने कहा कि कुछ मामलों की फाइलें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, फिर भी अदालत सावधानीपूर्वक काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब समय अभाव या अन्य कारणों से इजलास स्थगित करने की परंपरा को समाप्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है। संवैधानिक इजलास को व्यवस्थित बनाने के लिए अब सप्ताह में 2 दिन अनिवार्य रूप से सुनवाई सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत का उद्देश्य केवल मामलों का त्वरित निपटारा करना ही नहीं, बल्कि संवैधानिक अस्पष्टताओं को समय पर दूर कर राज्य के विभिन्न अंगों को स्पष्ट दिशा प्रदान करना भी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में जनमत का सम्मान सर्वोपरि है और निर्वाचित प्रतिनिधियों की वैधता से जुड़े मुद्दे लंबे समय तक लंबित नहीं रहने चाहिए। इसी क्रम में चुनाव से संबंधित सभी विवादों को प्राथमिकता देकर अंतिम निर्णय करने की कार्ययोजना बनाई गई है। कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश मल्ल ने बताया कि संवैधानिक इजलास में लंबित मामलों में से कम 1/3 मामलों का निपटारा आगामी 3 महीनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही संघ और प्रदेश के बीच अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता लाकर राज्य व्यवस्था को टकराव के बजाय सहयोग की दिशा में आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। कोशी प्रदेश के 3 जिलों झापा, मोरंग और सुनसरी में बर्ड फ्लू संक्रमण फैलने के बाद लगभग 85,000 मुर्गियों को नष्ट किया गया है। पशु पक्षी तथा मत्स्य विकास निदेशालय विराटनगर के वरिष्ठ पशु विकास अधिकारी डॉ गंगाराम यादव के अनुसार इन जिलों के 22 व्यावसायिक पोल्ट्री फार्मों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि मोरंग के 8, झापा के 2 और सुनसरी के 12 फार्म प्रभावित हुए हैं। संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए संबंधित क्षेत्रों में उच्च सतर्कता बरती जा रही है और पक्षीजन्य उत्पादों के आयात निर्यात पर रोक लगा दी गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सस्मित पोखरियाल ने आज जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड और चिकित्सा शिक्षा आयोग का स्थलगत निरीक्षण किया। मंत्री पोखरियाल के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने भक्तपुर के सानोठे में स्थित दोनों संस्थानों का अवलोकन किया। मौके पर मंत्री पोखरियाल ने संस्थानों को सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग और सहजीकरण प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने संभावित सहयोग के क्षेत्रों की पहचान कर समन्वित रूप से आगे बढ़ने पर विश्वास व्यक्त किया। जनक शिक्षा सामग्री केंद्र में पुस्तक छपाई प्रक्रिया और अन्य संरचनाओं का निरीक्षण करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि पाठ्यपुस्तकों को समय पर छापकर विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए। इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा आयोग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मंत्री पोखरियाल ने कैलाली स्थित गेटा विश्वविद्यालय के संचालन में आ रही कानूनी बाधाओं को दूर कर जल्द आगे बढ़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के प्रेस तथा अनुसंधान सलाहकार के रूप में दीपा दाहाल को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय के अनुसार दाहाल प्रधानमंत्री की संचार रणनीति निर्माण, अनुसंधान एवं मीडिया प्रबंधन से जुड़े कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को लेकर भ्रामक ऑडियो वीडियो सामग्री और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर अफवाह फैलाने के आरोप में पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में 11 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। परराष्ट्र मंत्रालय ने आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जानकारी दी कि सऊदी अरब में 4, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और कतर में 3-3 और ओमान में 1 नेपाली नागरिक को हिरासत में लिया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री के अनुसार मिसाइल और ड्रोन हमलों से संबंधित तस्वीरें व वीडियो सामग्री सोशल मीडिया पर साझा कर भय और दहशत फैलाने और स्थानीय कानून का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नेपाली नागरिकों की स्थिति और उनकी रिहाई के प्रयासों के संबंध में संबंधित देशों के दूतावासों और राजनयिक निकायों के साथ समन्वय किया जा रहा है। प्रवक्ता क्षेत्रीय ने यह भी बताया कि मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव के बावजूद रोजगार पर तत्काल कोई व्यापक जोखिम नहीं है। हालांकि जो नेपाली नागरिक असुरक्षित महसूस कर स्वदेश लौटना चाहते हैं उनके लिए सरकार द्वारा लगातार उद्धार कार्य किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेपाली नागरिकों की सुरक्षित वापसी और आवागमन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने आज से 3 दिनों के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था भी की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लगभग 5 दशकों के बाद मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रमा की ओर अग्रसर हुई है। अमेरिकी संस्थान नासा के आर्टेमिस द्वितीय मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों ने 1 दिन पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के बाद इंजन प्रज्वलित करते हुए चंद्र यात्रा का ऐतिहासिक चरण शुरू किया है। लिफ्ट ऑफ के लगभग 25 घंटे के बाद किया गया ट्रांसलूनर इग्निशन सफलतापूर्वक संपन्न होने के साथ ही 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई अंतरिक्ष यात्री को ले जा रहा ओरियन कैप्सूल पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर लगभग 2,50,000 मील यानी 4,00,000 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा की ओर बढ़ गया है। नासा की अधिकारी लोरी ग्लेज ने घोषणा की कि सन 1972 में अपोलो 17 के बाद पहली बार मनुष्यों ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी है। इस परीक्षण को नासा की दीर्घकालिक चंद्र योजना स्थायी आधार स्थापना और भविष्य में निरंतर मानव उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण आधार माना गया है। कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और ह्यानसेन चंद्रमा के निकट पहुंचकर उसके पीछे से घूमकर पुनः पृथ्वी लौटने की योजना बना रहे हैं। इस क्रम में उनके सन 1970 के अपोलो 13 द्वारा बनाए गए दूरी के कीर्तिमान को तोड़ने की अपेक्षा है। साथ ही 10 अप्रैल को पृथ्वी पर लौटते समय सबसे तीव्र गति से पुनः प्रवेश करने की संभावना भी है। अगला महत्वपूर्ण चरण सोमवार को चंद्रमा के निकट पहुंचने पर होगा। ओरियन कैप्सूल चंद्रमा से लगभग 4,000 मील यानी 6,400 किलोमीटर निकट पहुंचकर उसके दूरस्थ मार्ग का दुर्लभ दृश्य अवलोकन करेगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सभामुख पद पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल का निर्विरोध निर्वाचित होना तय। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विकास योजनाओं, बजट क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों पर गंडकी प्रदेश के सांसदों के साथ की चर्चा। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल के 76वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। लोकतंत्र की स्थापना और उसे संस्थागत करने में रेडियो नेपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ विक्रम तिमिल सिन्हा का कथन। और लगभग 5 दशक बाद मानव युक्त अंतरिक्षयान चंद्रमा की ओर हुआ रवाना। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।